लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। हम सबको पता है दीदी जी के अनेकानेक विशेषताओं से संपन्न बाबा ने आपको बनाया है, और वो ऐसी विशेषताएं हैं कि जो हर कोई आत्मा दीदी जी से मिले और वो संतुष्ट न हो ऐसा कभी होता नहीं। केवल आपको देखते से ही आत्माओं में वो खुशी, वो उमंग और उत्साह आ जाता है कि जिन्हें हम टीवी पर देखते थे, जिनकी हम सीडी सुनते थे, वो दीदी हमको सामने से मिली और वो दीदी को हमारी ओम शांति हुई। ओम शांति करने से ही वो बेहद खुश हो जाते हैं, ऐसे सर्व को खुशी की खुराक खिलाने वाली। दिल खुश टोली अपने मुख के वाणी के द्वारा ज्ञान अमृत बरसाने वाली ऐसे आदरणीय उषा दीदी जी हम सभी के बीच है। आपकी मनन शक्ति के लिए मैं तो सदा दीदी सलाम करती हूँ, सदा दिल से ये कहती हूँ कि बाबा ने दीदी को एक विशेष ब्रेन दिया, जो कोई बात सुने या समझे वो हर समय नई महसूस होती है। तो हम सभी को भी आज शक्तिशाली मक्खन मिलने वाला है, खुशी है ना? तो ताली बजाइए जोरदार दीदी के ऑनर में। ताली एक हाथ की नहीं, कहा दो हाथ की। बाल्यकाल की अवस्था में ही ईश्वरीय ज्ञान साउथ अफ्रीका में प्राप्त हुआ, सोचने की बात है। केवल 12 साल की उम्र में शिव बाबा ने अपना बना लिया। 1980 से आपने अपनी जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित की, और जैसे कहा कि अनेक विशेषताएं, उसमें सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स के द्वारा अनेक कंपनियों में आध्यात्मिकता का नया स्वरूप आपने ही सामने रखा। पहले पहले जो कोर्स स्टार्ट हुआ नागार्जुना केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से आरंभ किया, आप सभी को वर्तमान समय विद्यावाचस्पति गीता ज्ञान स्पष्ट करने वाले, और बाबा का जो एक संकल्प रहा है बच्चे गीता ज्ञान बाबा दे रहे ये प्रत्यक्ष करना है। तो दीदी जी बहुत मेहनत करके उन आत्माओं के मुख से ही ये शब्द अनुभव कराते कि गीता ज्ञान दाता शिव बाबा है। ऐसे विद्यावाचस्पति दीदी हम सबके बीच में है, रामायण का सत्य सार आध्यात्मिक रहस्य सुनाते हैं। वर्तमान समय हम सभी बाबा का चैनल पीस ऑफ माइंड में आपके योग शिविर सुनते, क्लासेस सुनते हैं, और बहुत शक्तिशाली स्थिति वहां रहते भी महसूस करते हैं। हमने तो ये अनुभव किया दीदी कि भाई बहन ये पूछते हैं कौन से दिन और कितने बजे उषा दीदी जी की क्लास है बाबा मिलन के समय पर, वो हमें जरूर बताना, और टाइम निकाल कर देखते हैं, और कईयों का मिस होता है तो वो यूट्यूब पे भी क्लासेस सुनते हैं। वर्तमान समय तीनों ही स्थानों पर आप सेवा देते हैं, देश विदेश में बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में आप तत्पर है। जब भी कहो, जब जहां भी कहो, हाजी का पाठ आप में विशेष अनुभव होता है। तो दीदी जी, आज बांगुर कलकत्ता के भाई बहन अपने ही मधुबन के आंगन में आपका नैनो से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार, आप आए अपने द्वार, स्वागत है, स्वागत है। एक हाथ की ताली। ओम शांति। विषय है अनुभव का आधार अंतर्मुखता।
ओम शांति। बाबा ने ड्रामा में एक सुंदर विधि बना करके दी कि मधुबन की तपस्या भूमि में तपस्या करने का, अनुभव करने का विशेष चांस मिलता है। एक बार बाबा ने कहा था कि मधुबन एक किला बन जाएगा, याद का किला। और सचमुच जब देखते हैं एक से एक ग्रुप आकर के अपनी तपस्या करते हैं, तो सचमुच ये याद का किला बन गया है। और ऐसे किले में विशेष समय निकाल करके आप सभी पहुंचे हो अनुभव करने के लिए, और उसके लिए विशेष अंतर्मुखता आधार है। जब अंतर्मुखता ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले तो ये स्लोगन याद आता है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। दूसरी बात, जब अंतर्मुखता शब्द सुनते हैं तो ये याद आता है कि बाबा ने कहा है कि अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। दूसरी बात, जब अंतर्मुखता कहते हैं तो ये याद आता है कि अंडरग्राउंड हो जाओ। और तीसरा, अंतर्मुखता अर्थात सागर के तले में चले जाओ। ये तीनों ही बात अंतर्मुखता के लिए है। चाहे गुफा में बैठ जाओ, चाहे सागर के तले में चले जाओ, चाहे अंडरग्राउंड हो जाओ, तीनों शब्द का अपना अपना महत्व है। जब बाबा ये कहते हैं कि गुफा में चले जाओ, तो गुफा अर्थात गुफा क्या याद दिलाता है? गुफा याद दिलाता है कि ऋषि बनना है। ऋषि मुनि लोग गुफा में रह करके तपस्या करते थे, तो ऋषि बनने का भाव है या ऋषि बनने की प्रेरणा देता है। ऋषि का मतलब है दुनिया से जिसका कोई भी संबंध न हो। और इसीलिए जब अंतर्मुखता की गुफा में हम बैठ जाते हैं तो राज ऋषि बन जाते हैं। एक तरफ है राज ऋषि, दूसरे तरफ है वैरागी। बेहद के वैराग्य बाबा हम बच्चों को दिलाता है, और देह से परे देही बनने के अभ्यासी बनना, ये आधार है बेहद के वैराग्य के लिए। कि जहां देह से भी हमारा नाता ना हो, ऐसी गुफा में हम चले जाएं, एकदम देही स्वरूप में स्थित हो जाए, जहां स्मृति से अपनी समर्थि को हम पावरफुल करते हैं। बहुत सुंदर एक बार दादी गुलजार जी का क्लास था, याद आता है कि दादी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अंतर्मुखता क्यों कहते हैं। तो मुख के ऊपर विशेष कर्मेंद्रिया है, मुख के ऊपर ही विशेष कर्मेंद्रिया है। पांच कर्मेंद्रिय में से विशेष चार कर्मेंद्रिय तो मुख पर भी है, साथ ही साथ आत्मा का स्थान होने कारण जो सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं वो भी मुख पर ही है। मुख अक्सर लोग ये समझते कि अंतर्मुखता माना मुख का मौन करना, लेकिन बाबा हमें गहराई उसकी और समझाते हैं कि मुख का मौन तो दुनिया वाले भी रखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु इसी मुख पर मस्तिष्क है और मस्तिष्क में जो मन है, मन बुद्धि का मौन या मन का मौन, ये विशेष अभ्यासी हमें बनना है कि मन के अंदर भी, मन का मौन का मतलब ये नहीं कि विचारों को रोक देना है, विचार ही न चले ये नहीं, लेकिन मन का मौन अर्थात व्यर्थ से मौन, नेगेटिव से मौन, लेकिन स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप अपना तैयार करना, ये है अंतर्मुखता की गुफा में जाना। मन का मौन भी तभी हो सकता है कि जब पहले ये तीन इंद्रियों का मौन हो, क्योंकि मन के विचारों का चलने का आधार नयन है, बातें जो सुनते हैं वो बातें हैं, और जो व्यर्थ के प्रभाव में आकर के बातें बोलते हैं, तो पहले तो इन तीनों का मौन रखना जरूरी है। कानों का मौन, आंखों का मौन और मुख का मौन, जब ये तीनों का मौन है तब मन का मौन यानी व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को ऊपर उठा करके, व्यर्थ के जो आकर्षण है, जो आंखों को खींचता है बाहर की दुनिया के अंदर, जब कोई चीज देखी तो वो आकर्षण नहीं तो खींचा हमारे संकल्पों को, व्यक्ति भले स्थूल से न चला जाए लेकिन देखी हुई चीजें स्मृति के अंदर बार बार उभरती रहती है। इसीलिए जब मधुवन में आए हैं विशेष तपस्या करने के लिए, तो हम ऐसी गुफा में अपने आप को ले चले कि जो देखी हुई चीजें हैं वो भी हमारे स्मृति के अंदर न आए या हमारे मन को आकर्षण करके न ले जाए। कानों द्वारा जो बातें सुनी हैं या जो वायुमंडल का प्रभाव है मन की स्थिति के ऊपर, तो उससे भी मौन यानी व्यर्थ के वायुमंडल के प्रभाव से ऊपर उठना, या कानों द्वारा जब सुनते हैं तो परमत का प्रभाव पड़ता है, तो वो परमत के प्रभाव से ऊपर। तो ये तीनों इंद्रियां अक्सर या परमत, पर दर्शन या मन मत की बातें बोलती है। तो इसीलिए ये तीनों पर से ऊपर उठ जाना, ये है गुफा। गुफा माना ही बाहर के आकर्षण, बाहर का वायुमंडल, बाहर की बातें, उससे अपने आप को परे उठा लेना और तब हम सही अर्थ में मन का मौन अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। जब इस तरह की गुफा में हम बैठ करके आत्मस्थिति का अभ्यास में अपने आप को लगा देते हैं, देह से परे देही का अभ्यासी हम बन जाते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाने से, जब इस तपस्या से उठने के बाद भी हम देही होकर के अपनी कर्मेंद्रिय को भी मालिक बन करके चला सकेंगे, ये गुफा का प्रभाव है। क्योंकि कोई स्थूल गुफा में बैठने की बात नहीं है और इसीलिए ये अभ्यास हमें डेवलप करना है। गुफा माना तपस्या और तपस्या का आधार त्याग है। तपस्या बिना त्याग के नहीं हो सकती है। तो जब गुफा में बैठते हैं तो कौन सा त्याग करना है ताकि तपस्या हमारी सही हो, तो त्याग है मैंपन के भान का त्याग। क्योंकि यही अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों को चलाने का आधार है। मेरेपन का त्याग कि जब हम ये गुफा में बैठे हैं तो उस वक्त न मैंपन न मेरापन, मेरा कुछ नहीं है, मैं डिटैच्ड हूं। तब ये सहजता से डिटैचमेंट का अनुभव करते हुए हम इस गुफा में एकांत में जा सकते हैं। एकांत में यानी वो एकाग्रता को विकसित कर सकते हैं जिस एकाग्रता से हम उस एकांत में पहुंच जाएंगे और सहज अनेक प्रकार के अनुभव बाबा के हम कर सकते हैं, जिसके लिए दुनिया में लोगों ने अभ्यास किया। क्योंकि यादगार तो हमारा है, ऋषि मुनियों ने भी जो गुफा में अभ्यास किया ये हमारे ही यादगार की स्मृति है, जिस कारण उन्होंने स्थूल गुफा को अपनाया और उस गुफा में जब तपस्या किया विशेष तो सिद्धि को प्राप्त किया। तो गुफा माना जहां सिद्धि प्राप्त होती है। कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक हम अपने अंदर जमा कर सकते, ये सिद्धि है बहुत बड़ी। क्योंकि अंतिम समय हमें यही सिद्धि काम आने वाली है। जो सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, अगर ये अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करके अपने अंदर जमा ही नहीं किया तो अंतिम समय ये हथियार हमारे पास होंगे ही नहीं। और उस समय जो परीक्षाएं आने वाली है, उन परीक्षाओं पर विजयी होने के लिए यही शक्तियों का हथियार चाहिए। इसीलिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बच्चे अष्ट में आने का पुरुषार्थ क्या है, तो जिसके पास सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा है वही अंतिम समय विजयी होकर के अष्ट रतन में आ सकते हैं। तो बिना गुफा में बैठे तपस्या किए हम ये सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, सर्व शक्तियों का स्टॉक क्योंकि अंतिम समय जो पेपर आने वाले हैं, चाहे उसका सामना करना है, सहन करना है या उसको पार करना है, तो ये बिना सिद्धि के प्राप्त उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उन पेपरों में अटक जाएंगे और उस समय ये महसूसता आएगी, ये शक्ति मेरे में नहीं है, ये सीन को देखने की शक्ति मेरे में नहीं है, या ये परिस्थिति को पार करने के लिए सामना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो जितना ही अंतर्मुक्ता की गुफा में हम बैठने का अभ्यासी हो जाते हैं, उतना हम अपने अंदर सर्व शक्तियों के स्टॉक को जमा कर लेते हैं, जो उस समय हर पेपर को क्रॉस करना इतना आसान हो जाएगा और नंबर वन में हम पहुंच सकते हैं। दुनिया में उन ऋषि मुनियों ने तपस्या करके कौन सी सिद्धि को प्राप्त किया? उन्होंने तपस्या करके यही सिद्धि को प्राप्त किया कि धरती के ऊपर उड़ गए या पानी पर चल गए या आग पर चल गए, ये सिद्धि को प्राप्त कर लिया। वास्तव में ये सिद्धि भी हमारी ही है, धरती से ऊपर उठ जाना, कि जो हम तपस्या करते हैं गुफा में बैठ के, तो हम कौन सी धरनी से ऊपर उठ गए? देह अभिमान की धरनी से अपने आप को ऊपर उठा देते हैं। तो ये हमारा ही यादगार है, लेकिन उन्होंने स्थूल रूप में किया। हमारी सूक्ष्म शक्तियां हमें ऊपर उठाती है। आग से क्रॉस करना, ये सिद्धि प्राप्त कर लिया। हमें कौन सी आग से क्रॉस करना है? जो अंतिम समय बाबा कहते हैं कि हर विकार अपना अंतिम दाव लगाएगा, तो वो विकारों की आग, और उसमें भी एक साथ में अगर ये विकारों ने आक्रमण किया तो वो आग कैसी होगी? उस आग से अपने आप को क्रॉस कराना, ये हमारी सिद्धि है। और पानी पर चलना माने, पानी मतलब, पानी माना बहाव। तो अंतर्मुखता की गुफा में जो बैठते हैं वो अनेक प्रकार के बहाव से परे है। न कोई आकर्षण का बहाव हमें खींच के ले जा सकता, न कोई साधनों का बहाव हमें खींच के ले जा सकता है। दुनिया के कोई भी बहाव, संबंधों का बहाव, साधनों का बहाव या आकर्षणों का बहाव, साइट सीन्स का बहाव, ये हमें खींच करके ले नहीं जा सकते, उसके ऊपर चलते हैं। ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में ऋषि मुनियों ने ये सिद्धि प्राप्त की जब गुफा में बैठे, तो इस वक्त हम भी अपने आप को इस गुफा में ले जाते हैं और इस सिद्धि का सूक्ष्म स्तर पर अनुभव करते हैं। दूसरी बाबा ने बात कही अंडरग्राउंड हो जाना। कोई भी व्यक्ति अंडरग्राउंड कब जाता है? अंडरग्राउंड कब जाना होता है? अंडरग्राउंड जाना होता है। बाबा की एक मुरली याद आती है कि दुनिया में जब बॉम्ब्स फेंकते हैं तो अंडरग्राउंड जाते हैं, है ना, सेफ्टी के लिए। तो इसी तरह बातें अनेक आती हैं जीवन में भी, उनसे सेफ्टी का साधन अंडरग्राउंड चले जाओ। चाहे बातों से अपने आप को बचाओ, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है, उसका भी सेफ्टी का साधन है अंडरग्राउंड। अच्छा, जो लोग कार्य क्षेत्र पर काम करने जाते हैं, अनेक प्रकार की व्यर्थ की बातें होती, अगर उन सब में उलझने लगे आप, हाँ हमें मालूम है यही है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे समय में सेफ्टी का साधन है अंडरग्राउंड हो जाओ, साइलेंस। अंडरग्राउंड माना साइलेंस, एकांत में चले जाना। अंडरग्राउंड जब कोई जाता है तो खाली सेफ्टी नहीं, जब कोई बात का रिसर्च करना होता है तो भी अंडरग्राउंड हो गया। मना कोई कमरे में अपने आप को रिसर्च करना है, उसको एकाग्रता चाहिए, तो एकाग्रता के लिए वो अंडरग्राउंड गया ताकि उस पर रिसर्च कर सके। अंडरग्राउंड होना माना इन्वेंशन करना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना। जो बाबा ने ज्ञान के गुह्य से गुह्य रहस्य हमें बताए, तो कभी कभी अंडरग्राउंड हो जाना मतलब रिसर्च करने के लिए अपनी मनन शक्ति को बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि बाबा ने हमें ये भी कहा है कि अंतिम समय आत्माएं आएगी आपके पास कि भाई आप इतने समय से ज्ञान में चल रहे हो, हमारे सामने ये समस्या है, क्या आप उसके लिए हमें बाहर निकलने का कोई उपाय दे सकते हो, कोई ज्ञान की बात हमें दे जो हमें प्रैक्टिकल करने में आसान हो जाए। और उस समय आपको हमें तो पता ही नहीं, तो क्या होगा, वो आत्मा कितनी निराश हो जाएगी। तो इसीलिए जब हमारे पास समय है, तो अगर आप खाली एकांत में ऐसे बैठे रहेंगे तो नींद आने की संभावना अधिक है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंडरग्राउंड होकर मनन चिंतन को बढ़ाओ, रिसर्च करो, इन्वेंशन करो, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। ज्ञान के इतने गुह्य से गुह्य रहस्य जो बाबा ने हमें बताए, एक एक पॉइंट की गहराई में जाओ, ये पॉइंट किस समय कहां अप्लाई कर सकते और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसको विजुअलाइज करना। तो अंडरग्राउंड होना माना अपना तीसरा नेत्र पावरफुल करना, मनन शक्ति के माध्यम से तीसरा नेत्र क्लियर कर देना, उसमें जो धूल जमी हुई है, जो धुंधलापन है, उस धुंधलेपन को क्लियर करके तीसरा नेत्र द्वारा स्पष्ट देखना। क्योंकि तभी आप सेफ्टी का साधन अपना सकेंगे। क्यों, बाबा ने कहा है हमें कई मुरलियों में कि बच्चे जब आप अंडरग्राउंड चले जाते हैं, उस साइलेंस में चले जाते हैं, तीसरा नेत्र जब आपका क्लियर होता है तो उस समय टचिंग्स होंगी। दिन भर में जो होने वाला है उसका आपको पहले से टचिंग आएगा। कोई विघ्न आने वाला है, कोई परीक्षा आने वाली है, उसकी भी टचिंग होगी। और जब टचिंग होगी तो आप पहले से ही अपने आप को सशक्त कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो उस विघ्न को पार करना, उस परीक्षा को पार करना आसान हो जाएगा। क्योंकि सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करते हुए आप विजयी बन जाएंगे। तो ज्ञान जो हमें मिला है, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बुद्धि रूपी तिजोरी में उसको ताला मार के बंद नहीं करना है, लेकिन मनन चिंतन के द्वारा ये पॉइंट को कहां यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं, ड्रामा की पॉइंट है, ड्रामा की पॉइंट का एप्लीकेशन कहां करना है, बीती बातें हैं उसको फुल स्टॉप, ड्रामा, जो हुआ कल्याण करे, बिंदी लगा दो, आगे बढ़ो, वहां अप्लाई करना है। लेकिन कई लोग कहां अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन गलत कहां कर लेते हैं, पुरुषार्थ में नहीं। जब किसी को कोई तकलीफ हो, मानो किसी का हाथ पैर टूट गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, बिस्तर में है, वहां जाके ड्रामा में जो हुआ ना अच्छा हुआ, रॉन्ग एप्लीकेशन। उस व्यक्ति को खुशी होगी ये सुन करके या दुख होगा, तो रॉन्ग एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ड्रामा की पॉइंट का एप्लीकेशन कहां करना है, कैसे करना है, त्रिकालदर्शी पने की स्थिति हम अपनी कैसे बनाएं उस ड्रामा के पॉइंट से, और कैसे उसको समझे कि कल्याण है खुद के लिए। ड्रामा की पॉइंट की एप्लीकेशन दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए। दूसरों को हम उमंग उत्साह की बातें देते हुए उसकी तकलीफ कम हो जाए, ऐसे उमंग उत्साह के जो ज्ञान की बातें हैं, जो व्यक्ति के अंदर खुशी प्रकट करे, तो इस तरह से ज्ञान की पॉइंट्स की भी एप्लीकेशन कहां करनी है। ये विजडम चाहिए, ये मैच्योरिटी चाहिए, ये गंभीरता, समझदारी चाहिए, ताकि सही समय पर जब उसका प्रयोग होता है तो उसका सही रिजल्ट हम देख सकते हैं। ये रिसर्च करना है। ज्ञान की ऐसे कई पॉइंट्स हैं, शक्तियां हैं। बाबा ने हमें कई बार ये मिसाल दिया है कि जहां सहन करना होता है वहां बच्चे क्या करते हैं, सामना कर देते हैं, तो गलत एप्लीकेशन हो गया। फिर कहते हैं बाबा हमने तो शक्ति को यूज किया, हमें तो गलत रिजल्ट मिल गया, क्योंकि गलत एप्लीकेशन हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान की कई पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें रिसर्च करना है कि कौन सी पॉइंट का एप्लीकेशन कहां होगा। अक्सर लोग, और एक उदाहरण अगर मैं देती हूं कि अक्सर लोग जीवन में जब भी कुछ होता है, हमारा कर्म का हिसाब किताब, अब इससे उमंग उत्साह बढ़ेगा भाई, कर्म का हिसाब किताब समझ लिया तो क्या होगा, अफसोस होगा, मेरे कर्म ऐसे कैसे, और उसमें इतने उलझने लगेंगे कि आपको कभी कोई बात का जवाब नहीं मिलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, व्यर्थ चलना शुरू हो जाएगा, मेरे ही कर्म के हिसाब किताब ऐसे। ब्रह्मा मामा के जीवन को आप देखो, बाबा के जीवन में अनेक परीक्षाएं आई, अनेक बातें आई, बाबा ने कभी ये शब्द नहीं उच्चारा मेरे कर्म का हिसाब किताब है, कहा कभी। वहां तक कि बाबा को खांसी भी आती थी तो भी बाबा ने नहीं कहा ये मेरे कर्म का हिसाब किताब है, बाबा ने कहा ये खांसी मेरी सखी है, अंत तक मेरे साथ रहने वाली है ये सखी, और उससे बाबा पार करता था। बाबा ने कभी हमें ये नहीं कहा हिसाब किताब समझ करके निरुत्साहित हो जाओ, उदासी, निराशा, हताशा में आ जाओ, या व्यर्थ संकल्प चलाना चालू करो कि मेरे ऐसे कौन से हिसाब किताब है जिस कारण मुझे ये भोगना भोगनी पड़ रही। ये कितना व्यक्ति को जो मोटिवेशन है उसको डाउन कर देता है, कितना उसका उमंग उत्साह डाउन कर देता है। लेकिन जब भी जीवन के अंदर, ब्राह्मण जीवन में कुछ भी होता है, सोचो ये पेपर आया है और ये पेपर मुझे पास करके रहना है, तो पास करने की खुशी होगी। पास करने के लिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे, लेकिन उसको पास कैसे करना है यह समर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब हम कोई गलत कर्म करते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञान होने के बावजूद अगर कोई गलत कर, तो उस वक्त अपने आप को अटेंशन देने के लिए कि इससे मेरा हिसाब किताब बनेगा, 100 गुना बढ़ेगा, उस बात को स्मृति में ला करके अटेंशन में अपने आप को ले आओ। बाकी जब भी कुछ होता क्या करे, मेरा हिसाब किताब, अरे क्यों हिसाब किताब समझ करके पुरुषार्थ करना ही कई लोग छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब किताब एक्सेप्टेड, और जब एक्सेप्ट, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो पुरुषार्थ तो होगा ही नहीं, और वो कभी हमारे अंदर उमंग उत्साह क्रिएट नहीं होने देगा। वो हिसाब किताब हमें बहुत ज्यादा लो फीलिंग में ले आएगा। इसलिए यही समझो, ये पेपर आया है और ये पेपर को मुझे पास करना है, पास विथ ऑनर होना है। ये खुशी अंदर में ले आओ, कैसे पास करना है उसकी तरकीब अंदर से निकालनी है कि ये पेपर को मुझे कैसे पास। तो उसके लिए अगर अंडरग्राउंड जाकर के एक एक पॉइंट का एप्लीकेशन कहाँ होता है, कौन सी शक्ति का एप्लीकेशन कहाँ होगा, कौन सा बल, मनोबल, ज्ञान का बल, पवित्रता का बल, ये बलों में कौन सा बल कहाँ अप्लाई करना है, इन सबको हमें सोचना होगा, तैयार करना होगा अपने आप को उस बेसिस पर। तो इसीलिए अंडरग्राउंड होने से रिसर्च बहुत विशाल रूप में होने लगेगा, और व्यर्थ नहीं, हर वक्त समर्थ संकल्प चलना आरंभ होगा। उससे बाबा कहते हैं कि कई प्रकार की आप ऐसी बातें का रिसर्च कर लेंगे कि कहां पर किस पॉइंट को अप्लाई करते हुए कैसे हम निश्चित भावी को जानते हुए आगे बढ़ सकेंगे, बेफिकर बादशाह होकर के आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन उसका भी एप्लीकेशन सही समय पर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई गलती हो गई और उसको लेकर के कई लोग परेशान हैं हमारे से, और उस समय हम कहे सबको बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ऐसे थोड़ी बेफिक्र बादशाह बनना होता है ना, गलत एप्लीकेशन हो जाता है। तभी कभी कभी ऐसे गलत एप्लीकेशन के कारण ही दुनिया वाले देख के क्या, आप लोगों के ज्ञान में जो है ना सहानुभूति नहीं रही है, सहानुभूति नहीं है, रहम दिल की भावना नहीं है। किसी को कष्ट हो रहा होगा आप कहेंगे बहुत अच्छा हुआ है ना, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। कैसे बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे ऐसे समय, और ये उस समय उसको सहयोग की आवश्यकता है, हमारे वाइब्रेशन के सहयोग की आवश्यकता है, हमारी शुभ भावना के सहयोग की आवश्यकता है, हमारे उमंग उत्साह के बोल के सहयोग की आवश्यकता है। वो सहयोग हम प्रदान करें और रहम दिल बन करके उसका कष्ट दूर करें, शुभ भावनाओं से, शुद्ध वाइब्रेशन से। एक भाई ने मुझे कहा, पहले मेरी पत्नी मेरा इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, इतना उसको ख्याल रहता था, जब से आपका ज्ञान ज्वाइन किया ना, हर बात में ड्रामा आ जाता है, उसका सेवा ही नहीं करती है, ऐसा बना देता है कि आपका ज्ञान है ना। वंडरफुल बात है। मुझे याद आता है कि यहाँ जब ग्लोबल हॉस्पिटल खुला था शुरू में, अब डॉक्टर्स खाली हो, नर्सेज हो, इतना तो स्टाफ नहीं चाहिए भाई, हर प्यून भी चाहिए, जैसे भाई बाहर बैठे हुए लाइन में जो बैठे उनका वो रिकॉर्ड अंदर डॉक्टर को देने के लिए। तो एक भाई जो था बड़ा ज्ञान के नशे में था वो हमेशा, तो बाहर बैठा रहता था, तो डॉक्टर साहब ने आकर कहा, भाई मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहा है, मैं पेशेंट को भेजना है अंदर। डॉक्टर साहब गुस्सा मत करो, आत्मस्थिति में स्थित हो जाओ। बड़ा हंसी आती थी कि कहां पर कौन सी पॉइंट की एप्लीकेशन करनी है। डॉक्टर साहब गुस्सा नहीं करो, वो डॉक्टर कहता है मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, आज का निकाल दो इसको, वो मुझे ज्ञान देता है कि इसमें क्या हो गया। अगर आपने बाहर आकर के एक पेशेंट को बुला लिया, मैं तो आत्मस्थिति का अभ्यास कर रहा था ना, आप मुझे सहयोग देते थे। अब देखो आत्मस्थिति का अभ्यास ऐसे करने के लिए कहा है क्या बाबा ने, है ना? आखिर क्या हुआ, दूसरे ही दिन उसको नौकरी से निकाल दिया। क्या होगा उसका जीवन में, कभी भी वो आगे बढ़ सकेगा? तो ज्ञान की पॉइंट का एप्लीकेशन कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, है ना? किस विधि से हमें अभ्यास करने के लिए कहा है? कार्य क्षेत्र पर जब हम है, अगर आत्मस्थिति में है, तो हम केयरलेस नहीं हो सकते। हमारा हर कर्म केयरफुल होता है, ये है अंडरग्राउंड होना। तो अंतर्मुखता का अभ्यास भी कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है जानना समझना। ये साधारण सी बात नहीं है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। अगर राइट एप्लीकेशन होगा तो ही सदा सुखी बनेंगे। रॉन्ग एप्लीकेशन करने के बाद आप कहो कि मुझे तो सुख का अनुभव ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा? रॉन्ग एप्लीकेशन हो रहा है। तो इसीलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। तीसरी बात, अंतर्मुखता माना सागर के तले में चले जाना। बाबा ने बताया था कौन से सागर के तले में जाना है, सुख शांति और आनंद के सागर के तले में जाओ, अनुभव करो, अनुभव के सागर में जाओ, और हर समय अनुभव करते हुए अनुभवी मूरत बनना है। अब ये सुख शांति और आनंद के सागर में कैसे जाएंगे, तो उसके लिए बाबा ने बताया है सर्व संबंधों का सुख एक से। सर्व संबंधों का सुख जब एक से है तो सुख के सागर में जाना आसान, उसके तले में जा सकेंगे। और बाबा के साथ के हर संबंध का अनुभव करना आसान हो जाएगा। इतने सुंदर अनुभव होंगे कि जैसे बाबा हमारे साथ साथ है, हर कदम साथ है। श्रीमत को एक्यूरेट चलते हुए उस सुख के सागर में चले जाओ। श्रीमत जो मिली है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें, वो श्रीमत को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हुए उस सुख के सागर में, सर्व संबंधों के सुख का रस लेते हुए उस सुख के सागर में समा जा, तो सदा सुखी। और जो सदा सुखी है उसकी निशानी क्या होगी? हम सुख के सागर में जाकर के सुख के सागर से अनुभव करके आए हैं, उसकी निशानी क्या होगी? कि वह मास्टर सुखदाता बन करके अनेकों को सुख देगा, उनके मन वचन कर्म से कभी किसी को दुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख का अनुभव करेंगे। सुख के सागर में समाये हुए की ये प्रत्यक्ष निशानी है कि हमारे कर्म से किसी को दुख नहीं मिल रहा है। हमारे हर कर्म, हमारे हर बोल, हमारे मन के हर संकल्प उन्हें सुख का अनुभव कराएगा। जिसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जो सुख के सागर के तले में या शांति के सागर के तले में जाएंगे, वो अलौकिक या रूहानी लीलाओं का अनुभव करने लगेंगे, रूहानियत की लीलाओं का अनुभव करेंगे। क्योंकि जितना साइलेंस के सागर में जाएंगे तो साइलेंस की शक्ति के द्वारा, विशेष अंतर्मुखी की तीन भाषाएं बताई है, तीन भाषा रूहानियत की भाषा, तीन भाषाएं हैं, नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा और कौन सी तीसरी, इशारों की भाषा, समझ पाएंगे योग युक्त युक्ति युक्त होकर के वो सहज उन भाषाओं को समझ सकेंगे। भावनाओं की भाषा, नैनों की भाषा, भावनाओं की भाषा और संकल्पों की भाषा, ये है अंतर्मुखी स्थिति की भाषा। उसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, साइलेंस की शक्ति वाला साइलेंस में रह करके भी बहुत कुछ बोल देता है, नैनो से भी वो बहुत कुछ बोल देता है, उसकी भावनाएं जो निकलती है वो भी बहुत कुछ बोल देती है, लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो ये सूक्ष्म भाषा के अभ्यासी हो जाते हैं। बाह्य मुखता में योग लगाना पड़ता है, अंतर्मुखता में योग लगा हुआ ही होता है, लगाना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं है, सहजता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखता सदा सो। ये तीन सागर जो बताए, शांति का सागर, सुख का सागर और आनंद का सागर। आनंद का सागर का मतलब है कि खाली गंभीरता नहीं, लेकिन गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस ब्राह्मण जीवन में होगा, ये आनंद के सागर का अनुभव कराएगा। जो व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर, जैसे बाबा की पर्सनालिटी में गंभीरता और रमणीकता दोनों ही दिखाई देती है ना, गंभीरता और रमणीकता दोनों ही दिखाई देती है, इसी तरह आनंद का सागर के अनुभव के तले में जाने से रमणीकता स्वतः, लेकिन रमणीकता भी ऐसी नहीं जो किसी को दुख पहुंचाए, रमणीकता भी किसी को खुशी में ले आए, हमारे स्वरूप की खुशी को देखते हुए दूसरे भी खुशी का अनुभव करने लग जाए। तो ये तीन सागर के अनुभव के तले में जाना माना अंतर्मुखता की स्थिति का अनुभव करना। तो ये तीन बातें, गुफा में जाओ कभी, कभी अंडरग्राउंड जाओ और कभी सागर के तले में जाओ, है ना। तो कई प्रकार के बाहर के अशुद्ध वाइब्रेशंस से आप अपनी सुरक्षा बना सकेंगे, अपने कवच पॉजिटिविटी का जो कवच है उसको विस्तृत कर सकेंगे, जो ओरा है अपना पॉजिटिव ओरा है उसको आप डेवलप कर सकेंगे, विकसित कर सकेंगे और उसके आधार पर आप जीवन के अंदर कई आत्माओं को भी बाबा तक आपके वाइब्रेशन पहुंचाएंगे। ये है अंतर्मुखता सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी, और ये अनुभव का आधार अंतर्मुखता की स्टेज है। तो अभी ये विशेष समय मिला है गुफा में जाने का, अंडरग्राउंड जाने का और सागर के तले में जाने का, है ना, ठीक है ना। एक दिन में तीनों में भी चले जाओ, अमृत वेला अलग अनुभव करो, दिन के समय में विचार सागर मंथन या मनन शक्ति का ज्यादा, नहीं तो नींद आती है, इसलिए बुद्धि को उसमें बिजी करो, जो बातें सुनते हैं उसमें बिजी करो, और शाम के समय में सागर के तले में चले जाओ, अनुभव करो, ठीक है ना। अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत गहराई से हम सभी को
गुफा में भी ले गए, सागर की गहराई का भी अनुभव करा दिया और अंडरग्राउंड भी हम सब बन गए, ऐसे महसूस ताई ना। हाथ हिलाइए। अभी हम एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे।